नमस्कार। आज हम बात करेंगे A.S. बायट के 1990 के बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास पोजेशन ए रोमांस की। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, मतलब ये एक तरह की भूल भुलैया है।
बिल्कुल, और इस भूल भुलैया का जो पहला सुराग है वो तो इसके टाइटल में ही है, पोजेशन।
हाँ, मतलब इसका सिर्फ ये मतलब नहीं कि किसी चीज पर आपका हक हो,
नहीं,
इसका मतलब जुनून भी है।
जैसे
किसी पर किसी चीज का भूत सवार हो जाना, है ना, किसी एक विचार का आपके दिलो दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लेना।
और ये सारे मतलब कहानी में धीरे धीरे परत दर परत खुलते हैं।
और देखिए, ये चिंतन तो किताब के उपशीर्षक से और भी गहरा हो जाता है, ए रोमांस।
सही कहा, ये शब्द भी अपने आप में एक धोखा है।
पहली नजर में तो यही लगता है कि ये कोई प्रेम कहानी होगी, और है भी, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन रोमांस का एक पुराना मतलब भी तो है।
हाँ, वही मध्य युग की वो साहसिक कथाएं जहां कोई योद्धा किसी रहस्य की, किसी होली ग्रेल की तलाश में निकलता है। तो ये उपन्यास भी ठीक वैसी ही एक साहित्यिक खोज की कहानी है,
बिल्कुल,
जिसमें दो समय, दो दुनियाएं एक साथ चल रही हैं।
तो चलिए इस दोहरी खोज की शुरुआत करते हैं।
कहानी हमें ले जाती है 1980 के दशक के लंदन में, और हमारा एक हीरो है रोलैंड मिशेल, पर उसकी जिंदगी में मतलब हीरो जैसा कुछ भी नहीं है, है ना?
कुछ भी नहीं, वो एक एक संघर्ष कर रहा स्कॉलर है जो एक बेसमेंट के सीलन भरे फ्लैट में रहता है,
जिसका शोध कहीं नहीं जा रहा,
और अपनी प्रेमिका के साथ उसका रिश्ता भी एक बोझ बन चुका है। उसकी दुनिया एकदम बेरंग रुकी हुई सी है।
वो विक्टोरियन कवि रैंडोल्फ हेनरी एश पर काम तो कर रहा है, पर उसमें वो जुनून नहीं बचा,
बस नियमों में बंधा हुआ अपनी जिंदगी को जैसे तैसे घसीट रहा है।
मुझे सबसे कमाल की बात यही लगती है कि रोलैंड, जो इतना सीधा साधा और नियमों में बंधा इंसान है, अचानक कहानी का सबसे बड़ा बागी बन जाता है।
हाँ,
ऐसा क्या होता है जो इस सोए हुए इंसान को जगा देता है?
एक खोज, लंदन लाइब्रेरी की खामोशी में उसे ऐश की एक पुरानी किताब मिलती है,
अच्छा,
और उस किताब के अंदर दबे हुए उसे दो अधूरे खतों के मसौदे मिलते हैं।
अरे वाह।
और ये खत ऐश ने किसी अनजान औरत को लिखे थे। उनमें एक ऐसे गहरे, भावुक और गुप्त रिश्ते का जिक्र था जिसके बारे में दुनिया को कोई अंदाजा तक नहीं था।
और बस उसी एक पल में
पता नहीं उसे क्या सूझा, जो काम उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा वो कर दिया।
क्या किया उसने?
सारे नियम कानून ताक पर रखकर उसने वो चिट्ठियां चुरा ली,
अच्छा,
और बस यहीं से कहानी ने असली रफ्तार पकड़ ली।
तो रोलैंड अब इस राज के साथ अकेला है, लेकिन जाहिर है इतनी बड़ी साहित्यिक चोरी और इतनी बड़ी खोज वो अकेले तो नहीं कर सकता।
नहीं कर सकता,
तो उसकी मदद कौन करता है, या कहूं कि कौन उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बनकर सामने आता है?
सामने आती है डॉक्टर मॉड बेली। वो रोलैंड से बिल्कुल उलट है। सफल, आत्मविश्वास से भरी और नारीवादी सिद्धांतों पर चलने वाली एक जानी मानी स्कॉलर। वो दूसरी विक्टोरियन कवियत्री क्रिस्टाबेल लामोट की एक्सपर्ट है, और उन्होंने अपने चारों तरफ एक दिमागी किलाबंदी कर रखी है।
मतलब
वो प्रेम को एक तरह का कब्जा मानते हैं जो खासकर औरतों की आजादी छीन लेता है।
तो जब रोलैंड लामोट का नाम लेता है तो मॉड को शक होता है,
बहुत शक होता है। उसे लगता है कि ये गुमनाम आदमी उसके रिसर्च के इलाके में घुसपैठ कर रहा है।
तो यहां से एक अजीब सी पार्टनरशिप शुरू होती है, एक हारा हुआ आदमी और एक बेहद सफल औरत,
दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग लेकिन एक ही रहस्य की डोर से बंधे हुए।
और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे ये आज के जासूस धीरे धीरे उन अतीत के कवियों का आईना बन जाते हैं जिन्हें वो खोज रहे हैं।
ये उस उपन्यास का सबसे खूबसूरत पहलू है। रोलैंड की यात्रा एक तरह से खुद को खोजने की यात्रा बन जाती है।
अच्छा,
वो जो अपनी जिंदगी में कोई जोखिम नहीं लेता था, अब वो ऐश और लामोट की सच्चाई जानने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देता है।
तो इस खोज से उसे अपने बारे में भी कुछ पता चलता है।
उसे आईने में अपनी सच्चाई दिखने लगती है कि वो असल में कितना डरपोक है, सिर्फ अपनी रिसर्च में ही नहीं बल्कि अपने रिश्तों में भी।
और मॉड, उसकी किलाबंदी का क्या होता है?
उसकी दीवारें धीरे धीरे दरकने लगती हैं। क्रिस्टाबेल लामोट, जिसे वो एक आज़ाद और जुनून से दूर रहने वाली कवयित्री मानती थी, उसकी कहानी मॉड के सिद्धांतों को चुनौती देती है। उसे पता चलता है कि एक औरत जुनून से प्यार भी कर सकती है और अपनी आज़ादी को बचाए भी रख सकती है।
तो ये खोज मॉड को उसके अकेलेपन के पिंजरे से बाहर निकालती है।
बिल्कुल, उसे भावनाओं की दुनिया से दोबारा मिलाती है।
और अतीत के वो दो किरदार रैंडोल्फ एश और क्रिस्टाबेल लामोट, वो भी कोई आम प्रेमी प्रेमिका नहीं थे।
बिल्कुल नहीं, ऐश बाहर से एक सम्मानित कवि थे, अपनी पत्नी के प्रति वफादार, लेकिन अंदर से वो बहुत अकेले थे।
उनकी शादी में प्यार था, पर शायद वो बौद्धिक बराबरी नहीं थी।
हाँ, वो जुनून नहीं था जिसकी उन्हें तलाश थी। वहीं क्रिस्टोबेल एक आज़ाद ख्याल कवियत्री थीं जो मर्दों की दुनिया से दूर अपनी एक अलग दुनिया में रहती थीं।
तो उनका रिश्ता दिमाग के मिलने से शुरू हुआ था।
हाँ, खतों के जरिए, विचारों के जरिए, और फिर वो एक ऐसे जुनून में बदल गया जिसने दोनों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया।
तो इन दोनों की, मतलब रोलैंड और मॉड की खोज कैसे आगे बढ़ती है?
ये एक पहेली की तरह है। उनकी खोज सिर्फ सुराग ढूंढना नहीं थी, बल्कि एक तरह से ऐश और लैमॉट के रिश्ते को दोबारा जीना था।
कैसे?
वो कवियों के खतों के सहारे उनकी यॉर्कशायर की यात्रा के रास्ते पर निकल पड़ते हैं।
अच्छा।
और ये यात्रा कहानी का एक अहम मोड़ साबित होती है। जिस खूबसूरत और जंगली माहौल में ऐश और क्रिस्टोबेल का प्यार परवान चढ़ा था,
उसी माहौल में रोलैंड और मॉड के बीच का पेशेवर रिश्ता भी बदलने लगता है।
हाँ, एक गहरी दोस्ती और आकर्षण में।
और यहीं उन्हें एक और अहम सुराग मिलता है जो कहानी को
और उलझा देता है।
हाँ,
उन्हें क्रिस्टोबेल की साथी ब्लैंच ग्लोवर की डायरी मिलती है।
अच्छा, और उस डायरी से क्या पता चलता है?
एक और कहानी, ब्लैंच का क्रिस्टोबेल के लिए एक तरफा जलन से भरा प्यार और ऐश के आने से उसकी दुनिया का उजड़ जाना।
तो कहानी में एक दुखद परत और जुड़ जाती है।
और भी ज्यादा जब पता चलता है कि ब्लैंच ने बाद में आत्महत्या कर ली थी। यॉर्कशायर के बाद कवियों का मिलना जुलना भी अचानक बंद हो जाता है।
तो एक सवाल हवा में तैरने लगता है, आखिर ऐसा हुआ क्या था?
बिल्कुल।
और इस सवाल का जवाब मॉड ढूंढती है ना, एक ऐसी जगह से जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता।
सही कहा। मॉड क्रिस्टोबेल की लिखी एक परिकथा का विश्लेषण करती है और उसमें छिपे प्रतीकों से ये सिद्धांत निकालती है कि यॉर्कशायर के बाद क्रिस्टोबेल गर्भवती हो गई थी।
क्या?
हाँ, और ये एक ऐसा धमाका था जिसने पूरी कहानी का मतलब ही बदल दिया।
मतलब ये सिर्फ एक गुप्त प्रेम कहानी नहीं थी?
नहीं, अब ये एक औरत के गहरे त्याग और बलिदान की कहानी बन गई थी।
तो क्या ये सच था?
सच इससे भी ज्यादा जटिल था। क्रिस्टोबेल ने वाकई एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन समाज और बदनामी से बचाने के लिए और अपनी आज़ादी को कायम रखने के लिए उसने उस बच्ची को अपनी बहन को पालने के लिए दे दिया था।
एक ऐसा राज जिसे उसने उस बच्ची के पिता रैंडोल्फ ऐश से भी हमेशा छिपा कर रखा।
हाँ,
ये तो दिल तोड़ने वाली बात है। और ये हमें कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ ले जाता है, जो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं है।
और क्लाइमैक्स तो कमाल का है। जरा सोचिए, तूफानी रात, कब्रिस्तान और दुनिया के सबसे बड़े स्कॉलर्स,
जिसमें रोलैंड और मॉड के साथ उनके वो लालची अमेरिकी प्रतिद्वंदी भी शामिल हैं।
हाँ, मॉर्टिमर क्रॉपर, और सब के सब कब्र खोदने के लिए कीचड़ में लोटपोट हो रहे हैं।
ये एकेडमिक दुनिया पर एक तीखा व्यंग भी है।
बिल्कुल, सब उस सच पर कब्जा करना चाहते हैं।
और उस कब्र में दफन बक्से से क्या निकलता है?
वो आखिरी खत जो क्रिस्टोबेल ने ऐश को लिखा था, और उसे पढ़कर दिल टूट जाता है।
क्यों?
क्रिस्टोबेल ने उस खत में ऐश को उनकी बेटी के बारे में सब सच बता दिया था।
तो?
लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वो खत ऐश की पत्नी के हाथ लग गया और उसने उसे ऐश तक पहुंचने ही नहीं दिया।
मतलब ऐश अपनी बेटी का होने की खबर जाने बिना ही मर गया?
हाँ, रुकिए, लेकिन कहानी में खुलासा और भी था जो शायद इन सबसे बड़ा है।
हाँ, असली धमाका तो अब होता है।
हाँ, जब सारे दस्तावेज सामने आते हैं तो पता चलता है कि मॉड बेली,
जो इस कहानी की सिर्फ एक शोधकर्ता थी,
वो असल में उसी गुप्त संतान की सीधी वंशज है।
क्या बात कर रहे हैं, मतलब मॉड सिर्फ इतिहास पढ़ नहीं रही थी, वो खुद उस इतिहास का एक जिंदा हिस्सा थी।
बिल्कुल, अतीत और वर्तमान के बीच का धागा अब सिर्फ बौद्धिक नहीं बल्कि खून का रिश्ता बन जाता है।
तो इस खुलासे के बाद कहानी का अंत एक तरह से सुकून भरा होता है।
हाँ, रोलैंड को एक अच्छी नौकरी मिल जाती है और वो और मॉड, जो अब तक अपनी भावनाओं से भाग रहे थे, आखिरकार एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को एक मौका देते हैं।
पर बायट हमें आखिर तक चौंकाती है ना, उपन्यास के अंत में कैसा पन्ना है जो सिर्फ हमें यानी पाठक को दिखाया जाता है, एक आखिरी राज।
वो उपसंहार, वो इस उपन्यास की आत्मा है। उसमें दिखाया गया है कि अपनी मौत से कुछ साल पहले ऐश संयोग से क्रिस्टोबेल के घर के पास से गुजरता है
और वहां उसकी मुलाकात एक छोटी बच्ची से होती है।
हाँ, वो उससे कुछ पल बात करता है, उसे एक हेयरपिन तोहफे में देता है और एक अजीब सा, अनजाना सा खिंचाव महसूस करता है।
और वो बच्ची?
वो बच्ची उसकी अपनी ही बेटी थी जिससे वो अनजाने में मिला और फिर हमेशा के लिए बिछड़ गया।
कमाल है।
ये दृश्य हमें बताता है कि इतिहास में कुछ सच ऐसे होते हैं जो किसी किताब, किसी खत या किसी विद्वान की पकड़ में कभी नहीं आते, वो बस हवा में रह जाते हैं।
तो अगर हम इस पूरी भूल भुलैया को समेटें तो बाइट का सबसे बड़ा तर्क क्या है? ये किताब पोजेशन यानी अधिकार के बारे में क्या कहती है?
बाइट का सबसे बड़ा तर्क शायद ये है कि इतिहास को जानने की हमारी कोशिश असल में उस पर कब्जा करने की एक हिंसक इच्छा है,
जैसे मॉर्टिमर क्रॉपर उन खतों को खरीदकर उन पर कब्जा करना चाहता है।
बिल्कुल, या बाकी स्कॉलर्स उस कहानी के एक्सपर्ट बनकर उस पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन उपन्यास दिखाता है कि जैसे ही हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं, इतिहास का असली सच हमारी पकड़ से फिसल जाता है।
सच जानने में नहीं
बल्कि उस रहस्य को स्वीकार करने में है जिसे हम कभी पूरी तरह नहीं जान सकते।
और इस उपन्यास में बायट की अपनी कला का भी एक अद्भुत नमूना है जिसे पास्टिश कहते हैं। ये क्या है?
पास्टिश बायट की सबसे बड़ी जादूगरी है। सोचिए, ये एक शेफ की तरह है जो 200 साल पुरानी रेसिपी देखकर बिल्कुल वैसा ही खाना बना दे जिसका स्वाद चखकर आपको लगे कि आप टाइम मशीन में बैठकर अतीत में पहुंच गए हैं।
सही कहा, बायट ने विक्टोरियन कविताएं, चिट्ठियां और डायरियां ऐसी लिखी हैं कि बड़े बड़े एक्सपर्ट भी धोखा खा जाएं।
और इस वजह से हम सिर्फ कहानी पढ़ते नहीं हैं,
हम खुद रोलैंड और मॉड के साथ मिलकर जासूस बन जाते हैं।
तो आखिर में ये उपन्यास हमें याद दिलाता है कि इतिहास केवल तथ्यों और तारीखों का संग्रह नहीं है,
बल्कि मानवीय भावनाओं, प्रेम, त्याग और अनकहे रहस्यों की एक जीवंत विरासत है।
और ये कि कला और प्रेम में सदियों को पार करने और हमें एक दूसरे से जोड़ने की अद्भुत शक्ति होती है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।